हम लोग आज भगवद गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। मेरे पीछे माइक पे भक्त बोलेंगे कोई। ना मे विदु सुरगणा
नामे विदु सुरगणा
प्रभवम नाम हर्षयः
प्रभवम नाम हर्षयः
अहम् आदिर्हि देवानाम्
अहम् आदिर्हि देवानाम्
महर्षीणां च सर्वशः
महर्षीणां च सर्वशः।
विद मतलब जानना, न मैं विदुः मुझको नहीं जानते हैं, सुरगण अर्थात देवता गण, प्रभवम न महर्षयः। यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं प्रभवम मतलब उत्पत्ति या ऐश्वर्य को ये नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते हैं कि उनके स्रोत भगवान कृष्ण हैं, देवतागण भी नहीं जानते। और ऐसा क्यों है तो कह रहे हैं अहम आदिर ही देवानाम, मैं सभी देवताओं का आदि हूँ, महर्षि नाम च सर्वशा, सारे महर्षियों का भी। अब इसी श्लोक से स्पष्ट समझ में आ जाता है कि क्यों भगवान को नहीं जानते, क्योंकि भगवान सभी के आदि हैं। जैसे हम अगर अपने पिता के बारे में क्यों नहीं जानते, अगर हमको बताया ना जाए तो हम नहीं जान पाएंगे कि पिताजी कौन है। जैसे महाराज एक बार एक कथा बताते, छोटी सी, एक लड़का था और उसके पिताजी सुबह उठने से पहले नौकरी पे चले जाते थे, और जब वो लौट के आता था उससे पहले वो सो जाते थे, जब वो पिताजी आते थे उससे पहले वो सो जाता था। तो उसने काफी समय तक पिताजी को देखा नहीं। एक दिन संडे को जब पिताजी घर में थे तो लड़का पूछता है, मदर हु इज दिस मैन, ये व्यक्ति कौन है? तो बोले माता कहती है ही इज योर फादर, ये तुम्हारा पिता है। तो फिर बच्चा पूछता है, पिता का मतलब क्या होता है मदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादर, पिता का मतलब क्या होता है? तो वह तो पिता को जब देखा ही नहीं है तो सोचेगा कि माता जी ही सब कुछ है। इसी प्रकार से जगत में लोग, भगवान कृष्ण तो आते नहीं है, कभी कभी आते हैं, ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं, तो लोग समझ नहीं पाते कि भगवान कौन है, केवल माता जी की पूजा करते हैं, माता जी मतलब दुर्गा जी की पूजा करते हैं। तो ये स्थिति है। एक श्लोक हमें एक और शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, जब देवताओं को पता नहीं है तो हमारी क्या बिसात है। बिसात का समझते हैं आप, सामर्थ्य। बस विषाद का मतलब हो गया सामर्थ्य। हमारा क्या सामर्थ्य है, हम भगवान को बिना सुने उनके स्वभाव को समझ लें। अब चौपाई तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शिव जी का ये एक अच्छा वक्तव्य है कि अगर कोई भगवान श्री राम के, भगवान कृष्ण के गुणों को समझ लेता है तो फिर और किसी का भजन नहीं करेगा। तो इसलिए आवश्यक है कि हम भगवान के गुणों को, ऐश्वर्य को सुने, जिसके द्वारा हमारी भक्ति का उद्दीपन होता है। उद्दीपन का अर्थ मैंने समझाया था ना आपको, इंस्पिरेशन मिलती है भक्ति करने, ठीक है। जैसे आज जब मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा था, प्रसन्न तो नहीं, प्रोत्साहित प्रोत्साहित हो रहा था कि अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तनम अघम पुमसो दहे दे दो यथानलह। इस प्रकार से अग्नि को अगर आप रखड़ी देंगे तो जला ही देगी, उस तरह से ज्ञान से अनजान से कैसे भी नाम जप करोगे तो हमारे पाप ध्वंस हो ही जाएंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग जीभ से कम उच्चारण करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, से करते रहना चाहिए जान से अनजान से। लेकिन ये अभ्यास जरूर होना चाहिए कि स्पष्ट उच्चारण हो हर दिन। अब ध्यान रखें, ये बात इतनी सिंपल है लेकिन बहुत गंभीर है। वैदिक सभ्यता में अगर किसी व्यक्ति को कोई नियम बताया जाता है तो वह उसके अधिकार के अनुसार वह करता है तो उसका अधिकार अपने आप आगे बढ़ता है। ये बात समझ में आ रही है? जो जिसका अधिकार है उसके अनुसार उसको नियम बताए गए कि ये तुम करो, तो ये इतना अच्छा सिस्टम बनाया गया है कि अगर आप उसके अनुसार कार्य करते हो तो अपने आप आपकी अधिकार की उन्नति प्राप्त हो जाती है, क्वालिफिकेशन योग्यता की उन्नति हो जाती है। डज इट मेक सेंस भाई? जैसे नर्सरी में हम लोगों को शेक्सपियर पढ़ने के लिए नहीं बोला जाता, एबीसीडी पढ़ने के लिए बोला जाता है। जब एबीसीडी सीख लेते हैं तो वर्ड बनाने की योग्यता जाती है, फिर वर्ड बना लेते हैं तो फिर सेंटेंस बनाने की योग्यता आती है। ये तो हम भौतिक जगत में देखते हैं ना, उसी प्रकार से हम लोग कम से कम जीभ के स्तर पे बोलने के हैं। मेक सेंस? तो जीभ से गलत ना बोलें। गलत का मतलब हरि कृष्ण मंत्र ठीक से उच्चारण होना चाहिए, सोना नहीं है, इतना हम अभी कर सकते हैं। बात बहुत सिंपल सी लगती है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब उच्चारण करें तो ठीक से करें। कभी कभी थोड़ी जप के बारे में बोल देता हूं, बट मैं वापस पॉइंट पे आ रहा हूं। पॉइंट ये है कि भगवान को हम भगवत गीता के द्वारा, भागवतम के द्वारा सुनते हैं, तब उनके गुणों और ऐश्वर्यों को समझते हैं और भक्ति करने की प्रेरणा हमको प्राप्त होती है। मैं खाली ये बोल रहा था, इस पॉइंट को मैं क्यों लाया, जब मैं भगवान के नाम की महिमा को भागवत से स्मरण करता हूँ तो अभी मुझे अच्छा लगे या ना लगे उससे मतलब नहीं है, मुझे करने की प्रेरणा मिलती है। ये मैंने इसलिए श्लोक को उद्धृत किया था, अन्यथा हमको कभी समझ में नहीं आएगा कि हरे कृष्ण बोलने से क्या हुआ। अब अगर बोली कृष्णा कुछ हुआ, ये दिक्कत है, हुआ बहुत कुछ लेकिन दिखेगा कुछ भी नहीं। हुआ बहुत कुछ, आपने कृष्ण बोला ये बहुत कुछ हो गया, कृष्ण सोच लिए कि आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन ये कैसे मालूम चलेगा कि कृष्ण सोच लिए कि आपकी रक्षा करेंगे? शास्त्र सुनते ये बात नहीं समझ पाते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कभी कभी लगता है कि अरे भाई हमें कृष्ण क्यों स्वीकार करेंगे, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। तो ये पॉइंट समझिए, प्लीज समझिए। यहाँ पे या तो किसी का राग हो कृष्ण से, एकदम राग है, वो ऐसे कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, अथवा शास्त्रीय श्रद्धा, तीसरा कोई उपाय नहीं। या तो आपका सहज राग है पूर्वाभ्यास से, आपका राग है बस आप नाम ले रहे हैं और आपको एकदम आनंद में डूब रहे हैं, तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो आपका शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए। आपको अनुभव नहीं भी प्राप्त हो रहा है तो शास्त्रीय श्रद्धा में मिलती रहना चाहिए, लेकिन बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। शास्त्र नहीं सुनेंगे तो श्रद्धा हो जाएगी कमजोर, जैसे कि हम लोग रोज खाते हैं, नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब देवता लोग नहीं समझ रहे हैं तो हम कैसे समझेंगे, बताइए। इसीलिए भगवद गीता भागवतम को नियमित रूप से सुनना बहुत आवश्यक है, तुम्हारी श्रद्धा जो है बड़ी पुख्ता, समझते हैं आप, मतलब मजबूत बनी रहे। ठीक, पढ़ते हैं अनुवाद। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम हूं। तो स्पष्ट है, पिता को बच्चा तभी जान सकता है वो सुने, अगर वो नहीं सुनता तो वो नहीं समझ पाएगा। गीता भूषण टीका। भगवान यह श्लोक इसलिए कह रहे हैं ताकि यह प्रदर्शित हो कि भगवत भक्तों की कृपा के बिना इस ज्ञान को समझ पाना बहुत कठिन है। देखिए, अब आप ये बताइए कि जो मैंने थोड़ा सा टीका अभी किया उसका इस पहली लाइन से क्या संबंध है? अभी मैंने कुछ टीका किया था ना, कुछ समझ में आ रहा था उस टीका का क्या कारण था पहली लाइन से? किसी को नहीं समझ में आ रहा। अभी मैंने क्या बोला था कि देवता लोग भगवान को क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि वो सभी की उद्गम है। पॉइंट नंबर वन, बच्चा अपने पिता को कैसे जान सकता है? मां से सुन करके। अब दोनों को जोड़ करके श्लोक पहली लाइन को समझिए। जब हम भक्तों के संग में परंपरा में ज्ञान प्राप्त करते हैं तभी भगवान को सीख सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। समझ में आया? इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, और क्योंकि भक्तों का संग जो परंपरा से कनेक्टेड है वह बहुत दुर्लभ है, ये मानते हैं आप? ये देखो क्या होता है, एक चीज आपने सुन लिया और विश्वास तब होगा जब आपको दिखने भी लग जाए। मैं कहूं ये मृदंग है और आपको टमाटर दिख रहा है तो आपको विश्वास होगा? क्यों भाई, ये मृदंग है ना यहाँ पे, मैं कुछ इसमें कोई आपको दिख रहा है कि मृदंग नहीं दिख रहा? मृदंग की जगह आपको टमाटर दिखेगा तो क्या कहना, टमाटर मुझे तो टमाटर दिख रहा है। शास्त्र मैं क्यों बोल रहा हूं, शास्त्र बोला दुख खा लिया, मुझे दिख रहा है सुख खा लिया, तो विश्वास कैसे हो? तो जो बोला जा रहा है तो इसको तो देखने का प्रयास अगर हम करें तब हमको शास्त्र सुनने में रुचि होती है। तो क्या ये दिख रहा है कि भक्तों का संग दुर्लभ है? अब समझ में आ रहा है कि क्यों कठिन है? कोई बता सकता है कि क्यों कठिन है भगवान को समझना? यस, भक्तों का मिलना मुश्किल है जो परंपरा में ज्ञान प्राप्त किए हों, और परंपरा में ज्ञान प्राप्त किए बिना व्यक्ति भगवान को क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि भगवान सभी के पिताजी हैं, सिंपल सी बात, ब्रह्मा जी के भी पिताजी। ठीक, ब्रह्मादि देवता और सनक आदि महान ऋषिगण भी मेरे प्रभुत्व और ऐश्वर्य को नहीं जानते हैं। आप अगर थोड़ा सा विचार करें, मेरे की जगह भगवान का नाम भी लगा सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कृष्ण की महिमा नहीं समझ सकते, ऐसे नाम की महिमा भी समझी नहीं जा सकती। यह प्रश्न करना कि एक ही नाम से अनादि काल के पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं, तो यही प्रश्न चिन्ह लगाना होगा कि कृष्ण की महिमा, कृष्ण की शक्ति को नापने का प्रयास। चलो, रूप गोस्वामी बोलते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपकी आपकी महिमा का वर्णन कर सकता है? उपनिषद भी आपके चरण कमलों की ज्योत्सना, गलत बोल गया, चरण कमल की ज्योत्सना नहीं, चरण कमल के नख की ज्योत्सना की उपासना करते। लाइने समझ में आई? इतना महान है भगवान का नाम, क्योंकि भगवान ही है वो साक्षात। इसीलिए शास्त्र से सुनना पड़ेगा। मेरे अनादि दिव्य स्वरूप गुण और विभूति तो उनकी मति का भी आवर्तन कर देते हैं। आवर्तन का मतलब होता है घुमा देते हैं। जैसे आप देखे ही हैं ब्रह्म विमोहन लीला में, ब्रह्मा भी चकित हो गए कि ये लड़का है, ये भगवान है। या फिर ब्रह्मा जी जब एक बार द्वारका जाते हैं, आप लीला जानते हो किस प्रकार से, वो कौन से ब्रह्मा, ठीक, और वो भी सबसे छोटे ब्रह्मा। फिर उस लीला को आप जानते हैं, जब सारे ब्रह्माओं को बुलाया, शिव जी को बुलाया, और कैसे बुलाया भगवान ने, केवल स्मरण मात्र से, ठीक, सब लीला जानते हैं ना वो बात। और उसके बाद हर व्यक्ति से भगवान क्या पूछ रहे हैं, कैसे हैं आप, सब ठीक चल रहा है, और हर व्यक्ति को क्या लग रहा है कि मैं ही कृष्ण के साथ हूं और कोई नहीं है। और फिर वो क्या उत्तर देते हैं कि भगवान जब से आप हमारे इस ब्रह्मांड में आए हैं सब शांति है। क्या मतलब हुआ उसका, हर व्यक्ति सोच रहा है कि भगवान उन्हीं के ब्रह्मांड में आए हुए। तो ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। अचिंत्य, अचिंत्य वैभव, ठीक है। जब तक हम भगवान की अचिंत शक्ति को स्वीकार नहीं करते, हम भगवान को नहीं स्वीकार कर सकते। भगवान अपनी अचिंत शक्ति से नाम के रूप में आते हैं, अपने विग्रह के रूप में आते हैं, हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। ये बातें बहुत सिंपल हैं, थोड़ी मतलब विचारणीय बातें, तभी हम भगवान को स्वीकार कर पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि उनकी मति का भी आवर्तन करा देते हैं। आवर्तन समझ में आया, घुमा देती है। तो हम लोग क्या है, हम क्या समझ सकते हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं सबका आदि हूं, मैं ही उनके प्राकट्य का कारण हूं और उनको बुद्धि व अन्य गुण देता हूं, और क्योंकि मैं ही उनके द्वारा दी गई मेरी आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें देवता या ऋषि के अनुरूप उनकी शक्तियां और पद देता हूं। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? देखिए थोड़ी विचारणीय बात है, हम भक्ति कर रहे हैं, जो भक्त मान लो सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, वो उसका नरक चला जाएगा है? नहीं, नरक नहीं जाएगा, तो आप जानते हो कि वह देवता बनेगा। अब यह जरूरी नहीं है कि उसको स्मरण रहे कि मैं देवता क्यों बना, तो आप अपने आप को देवता के पथ पे डालिए, जरूरी नहीं कि उसको स्मरण रहे कि मैं देवता क्यों बना। हम लोगों को कुछ करने की शक्ति प्राप्त है, कभी आप समझते हो कि शक्ति प्राप्त क्यों है, मैं कुछ बोल पा रहा हूं, प्रभु जी कुछ सेवा और कुछ सेवा कर पाते हैं, प्रभु जी को और अन्य भक्त लोग सेवा कर पा रहे हैं, कभी हम सोचते नहीं कि ये सब शक्ति आ कहां से रही है। अभी तो पता है कि भगवान से आ रही है, लेकिन अगर भक्ति नहीं की होते तो कभी सोच पाते। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि वह नहीं समझ पा रहे हैं, अगर हम भक्ति नहीं करते तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सारे गुण शक्ति कहां से आ रही है, भगवान से आ रही है, ये बात है। और ये सारी अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरे द्वारा मतलब भगवान की जो आराधना है उससे संतुष्ट होकर भगवान उनको ये भौतिक पद देते हैं। आप लोग को याद है ना, कौशिक जी ने भगवान को जल दिया था इसलिए उनको इंद्र बनाया गया, ये बलि महाराज कहते हैं, हम लोग कई बार प्रवचन में कह सकते हैं, याद है बात ना। तो अब कौशिक जी ने जल कब दिया कौन जाने, और जब वो इंद्र बन गए तो उनको ये याद नहीं कि मैंने जल कभी भगवान को दिया था। आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं, कृष्ण को सब याद रहता है कि आपने क्या क्या सेवाएं करी, लेकिन उस जीव को भले याद ले रहे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। श्रुति कहती है, को अधा वेद क इह प्रोवाचत, कुत आ जाता कुत इयम विसृष्टि, अर्वाग देवा अस्य विसर्जनाया, अथा को वेद यत आ बभूव, कौन है जो स्पष्ट रूप से जानता है जो और जो इस जगत में यह घोषणा कर सके कि यह ब्रह्मांड किससे आया है और यह सृष्टि किससे आई है। थोड़ा विचार कीजिए इस पे। इन दोनों प्रश्नों को अगर हम गीता और भागवत से न सुने तो कोई उत्तर है हमारे पास? महाराज इसको ऐसे बताते हैं और अच्छे तरह से कि जब हम पैदा होते हैं थोड़े बड़े भी होते हैं, कभी प्रश्न नहीं करते कि आंखें दी किसने और क्यों, कान दिए किसने और क्यों, इंद्रियां दिए किसने और क्यों, और इस आंख को पूरी साइंटिस्ट मिलकर भी दोबारा नहीं बना सकते। तो साइंटिस्ट सारे मिलके नहीं बना सकते हैं, तो किसी निश्चित रूप से किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने भी आंखें दी हैं। लेकिन ये प्रश्न कभी हम करते नहीं है कि किसने दिए। मेक सेंस ये बात। कभी हम अपने मन से नहीं सोच सकते, जीवन के उद्देश्य के बारे में कभी हम सोच ही नहीं सकते हैं अगर हम परंपरा में ना सुने। और ध्यान दीजिएगा कि भूलने की आदत हमारी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए नियमित रूप से सुनना बहुत जरूरी है ताकि याद रहे कि उद्देश्य क्या है। देवता गण सृष्टि के बाद आते हैं, इसलिए कौन जानता है कि यह जगत कहां से आई। ऋग्वेद की बात बोल रहे हैं। न एतद् देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत, वे देवता के द्वारा प्राप्त नहीं है, वे इन देवताओं के पहले से ही हैं। ये ईशोपनिषद में आता है तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। तो यह आप लोगों को समझ में आ गया कि देवता क्यों नहीं जानते भगवान के बारे में, भगवान के बाद ही आए हैं। एक बात, और भगवान इनकी इंद्रियों के सबके परे हैं, ठीक है। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। इस पे आज सुबह एक विनोद की बात हुई, हमने एक भक्त को बोला प्रभु जी आपने ये जूस गिरा दिया है। भक्त बोले प्रभु जी मैं सभी कारणों का कारण नहीं हूं। बोलो ऐसा नहीं कि आश्रम में कुछ भी गलत होता है तो उसका उस पर ब्लेम मेरे को ही लगा दिया जाए। कहा चलो अच्छा है, लेकिन इस मजाक में कम से कम कृष्ण का स्मरण हुआ, ये भी अच्छा होता है। इन्होंने तो उन्होंने तो मस्त मतलब एक विनोद में बात बोली कि मैं प्रभु जी सभी कारणों का कारण नहीं हूं, मतलब ये नहीं कि ये जूस गिरा तो इसका भी कारण मैं ही हूं, लेकिन मुझे इस बहाने कृष्ण का स्मरण हो कि सभी कारणों के कारण कृष्ण है। ये आप देखेंगे जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो जो विनोद होता है वह भी कृष्ण भावना भावित हो जाता है। हमारे अनंत कृष्ण प्रभु उसमें एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, वो जोक तो मारते हैं लेकिन बोलते सब संदर्भ से, ठीक है। आज यहाँ पे है नहीं वो। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते, जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस शूद्र लोक के तथा कथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। देख लीजिए आप, और हम तो विद्वान हैं भी नहीं, और अच्छा है कि विद्वान नहीं है। अगर विद्वान होते तो इस विद्वानी के गर्भ में भगवद गीता को नहीं स्वीकार करते। ये बहुत अच्छा है कि हम विद्वान नहीं है। आपको लगता है कि बात कि हम अच्छा है कि विद्वान नहीं है? ये बहुत अच्छा है कि विद्वान नहीं है। एक भक्त बोलते हैं पीएचडी मींस परमानेंट हेड डैमेज, जो थोड़ी बहुत बुद्धि है वह भी गायब हो जाती है, और व्यक्ति अहंकारवश भगवान को स्वीकार नहीं करता। आप देखो एक सिंपल से डिवोटी, जैसे हमारे ये सुदामा प्रभु आते हैं और नाचते हैं भगवान के सामने मंगल आरती में, हमारे सुदामा जी ग्वाला जी हैं, अब इन्हें क्या पता इसकी वजह से कहाँ पहुंच जाएंगे ये। अद्वैताचार्य जी कहते हैं कि अद्वैताचार्य जी से महाप्रभु कहते हैं कि आपको क्या वरदान चाहिए, कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके सामने नृत्य करने का मौका मिला, यही मेरी सफलता है, यही मेरी सफलता है। अद्वैताचार्य जो महाविष्णु है वो ये कह रहे हैं। तो मैं जब ये आना चालू किए तो मुझे बड़ी मतलब मैं अंदर से हंस भी रहा था और मैं खुश था कि इनको पता नहीं कि कर क्या रहे। सब लोग नाच रहे हैं तो हम भी नाच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो जान रहे हैं भगवान के सामने नाचना, लेकिन भगवान के सामने नाचना कोई सामान्य बात नहीं है। मैंने एक बार कोटेशन दिया था आपको, संकीर्तनम ध्वनिम श्रुत्वा यचा नृत्यन्ति वैष्णवः, जो वैष्णव संकीर्तन की ध्वनि को सुन करके नृत्य करते हैं तो वह वसुंधरा को पवित्र करते हैं, वसुंधरा को पवित्र करते हैं, धरती को पवित्र करते हैं, तो खुद कितने पवित्र जाएंगे अपने चरणों के रथ से, इतना शक्तिशाली। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, कोई हमारे संग आया, कोई नाचा गाया जो कुछ भी किया, ये बहुत शक्तिशाली। डू नॉट थिंक दिस चैंटिंग एंड डांसिंग विल नॉट गिव यू परफेक्शन, इट विल। समझे ना, ये मत सोचे कि नृत्य कीर्तन जो है यह है आपको पूर्णता नहीं देगा, लेकिन इसको करते रहने के लिए और एक सही भावना में करने के लिए हमें आवश्यक है कि हम सिद्धांत को भी सुने। ये बात इन कार्य बहुत जबरदस्त है। ये भी प्रणाम करते हैं, हम लोग भी प्रणाम करते हैं, किसी को मंत्र आए या नहीं आए लेकिन प्रणाम करने वाले को तो पता है ना कि किसको प्रणाम किया जा रहा है। तो ये सुंदर प्रोसेस है कृष्ण भावना का, सभी का गंगा जी की तरह सभी को उसमें स्नान करने की छूट है, लेकिन विद्वान लोग भाग जाते हैं। और इसका प्रमाण क्या है, चैतन्य महाप्रभु जब साधु बनारस में गए सब लोग प्रेम से आप्लावित हो गए, लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती नहीं आ रहे थे, फिर महाप्रभु को उनके पास जाकर उनका उद्धार करना पड़ा। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। देखिए ये चीज मैंने सोची नहीं थी कि प्रभुपाद के तात्पर्य में ऐसी है, एकदम यही बोल रहा था ना मैं, विद्वत्ता होने की आवश्यकता नहीं है, श्रद्धा की आवश्यकता है, गुरुजनों से वैष्णवों से सुने और प्रमाणिक रूप से स्वीकार करे। एक उदाहरण दूंगा आपको, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के एक शिष्य थे जो माली थे। माली बोले तो जैसे हमारे यहाँ पे सुदामा प्रभु माली है, गार्डनर है। तो वो बस कथा सुनते थे और सेवा करते थे, और उनका आधे घंटे के लिए एग्जाम लिया श्रील भक्ति सिद्धांत सर से ठाकुर जी। सोचिए प्रभुपाद जी आपसे आपका एग्जाम लें कि फिलोसफी तुम आती है कि नहीं आती, हालत ऐसे ही खराब हो जाएगी ना। प्रभुपाद जी आपसे पूछ रहे हैं प्रश्न, और फिर भक्ति सिंह ठाकुर जी तो इतने विद्वान थे कि कोई मतलब, और लोग डरते भी थे, सिंह गुरु के रूप में इनको बोलते थे। प्रभुपाद जी तो बड़े करुणामय है, कुछ गलती हो कोई बात नहीं, आओ चाहे हरे कृष्णा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की तो किताब ही समझ में नहीं आती क्या लिख रहे हैं, आज तक समझ नहीं आया ब्रह्म संहिता। और वह मतलब प्रवचन करते थे तो अंग्रेजी लोगों को समझ में नहीं आती थी, और वह आधे घंटे तक उनका परीक्षण लिए फिलोसफी का, उन्हें सारे सही उत्तर दिए। तब वो बोले सेवोन मुखे ही जीवादाओ स्वयमेव स्फुरतदा। हम सेवा करते हैं, ऑब्वियसली सेवा करते, भगवान के बारे में सुनते भी हैं तो हम भगवान को समझ पाते हैं। आज आपने सुबह देखा नहीं कि दशरथी प्रभु ने कितना सुंदर प्रवचन किया है कि नहीं? तो मैंने देखा कि उनका एक अच्छा, बहुत अच्छा स्वभाव है कि वह नियमित भागवत सुनते हैं और बहुत मतलब ध्यान पूर्वक सुनते हैं। और सही बताऊं तो मुझे विश्वास नहीं था कि वो ठीक से प्रवचन कर पाए। मैं अपनी मतलब मैं इनको अरेंज करने के लिए बोला कि आप प्रवचन दीजिए, मुझे विश्वास नहीं था कि ठीक से, उनको खुद को विश्वास नहीं था। मुझे बोले प्रभु जी मैं आधा घंटा बोल पाऊंगा, ठीक आधा घंटा बोलिए बाकी हम लोग कीर्तन करते हैं कुछ ऐसे। तो यह दिखाता है मुखम करोति वाचालम, जब हम सेवा करते हैं भगवान के बारे का गुणगान करने की इच्छा होती है तो भगवान हमको शक्ति देते हैं, और नहीं तो विद्वता से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया किंतु जान नहीं पाए। देखिए अब इसका अर्थ यह नहीं है कि हम शास्त्र ना सुने, नहीं तो फिर भगवान कहते मुझसे सुनो, पहले श्लोक में था सुनो, मतलब अगर हम ठीक ठीक जानना चाहते हैं तो हमें वैष्णव परंपरा में स्वीकार करना पड़ेगा। अपनी मानसिक अहोपोह से, चिंतन से हम भगवान को नहीं समझ सकते, ये बात बोली जा रही है। देखिए लीला चिंतन भी सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले अपने हृदय को हमें देखना होगा। राधा कृष्ण की लीला अगर हम दूषित चित्त से कर रहे हैं तो कृष्ण जी की जगह हम अपने आप को बिठा देंगे। ये बात समझ में आई जो मैंने बोली आपको? इसीलिए क्या हमारा अधिकार है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। अभी हमें प्रहलाद महाराज के बारे में सुनना चाहिए। महाप्रभु जी प्रहलाद महाराज के चरित्र को भी 108 बार सुने हैं और रोए हैं। ऐसा नहीं है कि वे राधा कृष्ण की लीला का ही वर्णन करते। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आप पढ़ें तो श्रीपाद रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संग राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करते थे। समान जनों में केवल संकीर्तन, कोई प्रीचिंग ही नहीं, केवल कीर्तन, कीर्तन प्रसाद बस। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के संग तत्व की चर्चा की है इत्यादि। तो हर व्यक्ति के संग अलग अलग प्रकार से कथा की जाती है, तो थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो लीला चिंतन कर सकते हैं, लेकिन लीला चिंतन कौन सा? आप महाप्रभु की लीला के बारे में स्मरण कीजिए। राधा कृष्ण की लीला का स्मरण करना गलत नहीं है, हमारी योग्यता क्या है उसके अनुसार। ठीक है, हाँ भगवान कृष्ण की बाल लीला का स्मरण कर सकते हैं। मैंने वृंदावन चंद महाराज से पूछा था ये बात कि महाराज हम पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मुझे अभी माधुरी लीला की चिंतन करने की योग्यता अनुभव नहीं होता, लेकिन हाँ बाल लीला कर सकते, क्या दिक्कत है? पूतना को भगवान ने मारा, उसको धार कर दिया, ये तो कोई कठिनाई नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि तत्व को हम बिल्कुल छोड़ देना चाहते हैं, जबकि वो स्वयं कृष्णदास कविराज को समय बोलते हैं सिद्धांत बोलिए चित्त ना करे आलस, यह लागे कृष्ण चरण सुदृढ़ मानस। तो इसलिए पहले यह तत्व, बहुत अच्छा बात भक्ति समित महाराज बोले, अगर हम तत्व में नहीं सुनते हैं, इंग्लिश में कह रहे थे, देन द लीला द पास्ट टाइम विल बी मिसअंडरस्टूड एंड मिस अप्लाइड। लीला को हम गलत तरह से समझेंगे और उसको गलत तरह से धारण करेंगे। कृष्ण की 16,000 तो मेरी 16 क्यों नहीं? और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते, जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रिया पहुंच पाती हैं वहीं तक वे सोच पाते हैं, और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीन गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह की मूर्तापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर कोई परम सत्य की धारणा करता है बिना परंपरा में ज्ञान धारण किए, तो वह इसी निष्कर्ष पर निकलेगा कि परम सत्य निराकार है। वो सब वो कल्पना ही नहीं कर सकता है कि एक व्यक्ति है जो पूरे जगत को चला रहा है, इतनी शक्ति कैसे आ सकती है। आप देखो, आप सुने हो ना कि सूर्य का तेज भगवान से आता है, आप सूर्य को देख के अंदाजा लगा लेंगे, चंद्रमा का तेज भगवान से आता है, देख के समझ में आ जाता है, तो देख के कुछ भी नहीं होता। एक मिनट, हमारे उद्धव द्वारकाधीश प्रभु नए एंट्री है हमारे इस आश्रम में, बताइए ये उड़िया है, बंगाली है कि साउथ इंडियन है कि नॉर्थ इंडियन है? आप देखो, आप देख के बता सकते हैं क्या? मुझे कुछ लोग बोलते हैं आप पुणे से हैं क्या, महाराष्ट्र से हैं क्या, तो बोलता है उड़ीसा से हो क्या, कहता कोई बंगाल से, बोलता है हम कहीं। आप देखो मुझको ही देख के लोग क्या क्या लोग बोलते हैं। अभी तो एक बार तो मैं, मुझे याद है, मैं स्टूडेंट के रूप में बाल छिला करके, बाल छिलाया हुआ था, काला चश्मा लगा करके और ट्रेन में था, तो एक हवलदार बोला अंग्रेजी आती है, सॉरी हिंदी आती है, वो सोच रहा था मैं विदेशी हूँ। तो कुछ भी लोग सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो देख करके आप एक इंसान के बारे में भी नहीं जान सकते, है कि नहीं? आप प्रभु जी हिंदी भी तो अच्छी बोलते हैं, अभी कैसे कह सकते हो कि, है ना, अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं, तो आप कुछ भी नहीं जान सकते। इसलिए जब एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति मतलब जिसको हम देख रहे हैं, हम सब लोग, आप देख के कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, तो भगवान को देख करके कैसे समझ लेंगे? समझ में आई बात? सुन करके ही समझा जाता, मेक सेंस? ठीक है, तो हमने आज, आज हम इसी श्लोक पर रुकेंगे, लेकिन हम खाली रिवाइज करा देते हैं एक बार। भगवान ने यहाँ पे क्या बोला कि देवतागण भी मुझको नहीं जानते हैं, कारण क्या है? वैसे भी के उत्सव है, और हमने और सीखा कि जो भक्तों के संग परंपरा में इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करता वह कभी नहीं समझ पाएगा। अब अगले श्लोक में भगवान ये बताएंगे कि उनको जान से बचा, ओ मेरे में, ओ मुझे लगा कि ये समाप्त हो गया, ऐसा क्यों हुआ मुझे? ओके, आई गॉट बिविल्डर्ड, आई एम कंडीशन्ड सोल। आप लोग खुश हो गए होंगे पहले के? ठीक ठीक, अच्छा ठीक है, ला ला सारी सारी सारी, कहाँ गया मैं? मुझे, अच्छा मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है ना, मुझे लगा कि यहाँ खत्म हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से मैं यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। कितना सुंदर बात बोल रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात, अमेजिंग बात प्रभुपाद बोल रहे हैं। कह रहे हैं देखो बेटा, देवता मुझको नहीं जान रहे हैं, लेकिन तुम मुझसे सुनोगे तो मालूम चल जाएगा कि मैं कौन हूं। कितना सुंदर बात बता रहे हैं, और एक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात महाराज बोले, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए अब देख सकते हैं, कुछ लोगों को ज्ञान होता है लेकिन ज्ञान देना नहीं आता, कुछ लोग को ज्ञान होता नहीं है लेकिन बोलते बहुत हैं, जैसे मेरा उदाहरण, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज्ञान भी होता है और देना भी आता है, उसमें परफेक्ट है भगवान कृष्ण। ये समझ में आया? पहला कैटेगरी के लोग क्या हैं? ज्ञान है और बोल नहीं पाते, समझ नहीं आता। दूसरा, आपके सामने वक्ता बैठा हुआ है, ऐसे ज्ञान है नहीं और बोलने में बहुत प्रवीण होते हैं, प्रवीण भी है अभी डाउट है। और भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बोलना भी बहुत अच्छे से आता है और सारा ज्ञान उनसे आता है। और एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि जब हम परंपरा में सुन रहे हैं तो भगवान आपके हृदय में प्रसन्न हो रहे हैं और हृदय वाला ज्ञान भी भगवान देते हैं। मेक सेंस? अगर परंपरा में नहीं सुन रहे हैं तो भगवान अप्रसन्न होंगे और जो भी ज्ञान है उसे कवर कर लेंगे। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का लाइन है, तुम्हें कहीं कोई स्पेकुलेशन की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे सुनो। भगवान सीधे बोल रहे हैं कि मुझसे सुनो कि मैं कैसा हूं। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे, यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता तो भी वे विद्यमान रहते हैं। अगर भगवान को नहीं जानते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सत्ता हमारे जानने पर निर्भर करती है। अगर 5 करोड़ उल्लू सूर्य के बारे में नहीं जानते, इससे सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। यस महाराज बहुत हंस रहे थे महाराज पे बहुत, जब ये बातें आती तो महाराज खूब टॉन्ट मारते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए इस दुनिया के कुत्ते और बिल्ली ये घोषणा करें कि हम नहीं मानते कि भारत का प्राइम मिनिस्टर ऐसी कोई चीज होती है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे यहाँ के मूर्ख लोग जो बोले कि मैं भगवान नहीं को नहीं मानता, इससे भगवान की कोई अस्तित्व पे प्रभाव नहीं पड़ता, और ऐसा मत सोचिएगा कि प्रभाव, इसका प्रभाव मूर्खों पर नहीं पड़ता। प्रत्यक्ष हजारों लोग खड़े रहेंगे, बोलेंगे, सामने वक्ता कहेगा अगर भगवान है तो तुरंत मेरे सामने उपस्थित होकर मुझे मार डाले, और नहीं तो मैं कहता हूं कि भगवान नहीं है। देखो कुछ नहीं हुआ, और वो मूर्ख स्वीकार कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं ना। अब मैं कहूं कि अगर भारत का प्रधानमंत्री है तो अभी आए और मुझे गोली मार दे, नहीं तो मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर को गरज पड़ी है, वो तो हवलदार भेज देगा, दो डंडे मारेगा, सब लाइन पे आ जाएंगे। मुझे आज किसी ने प्रश्न किया कि अरे भगवान है तो इतना पाप क्यों हो रहा है, हमने कहा सारा पाप बंद करवा दिया भगवान ने एक वायरस भेज करके, एक वायरस भेज के पूरी दुनिया की इंडस्ट्री ठप कर दी। सोचिए जिस दिन भगवान को सत्युग चालू करना पड़ेगा ना, आज क्या दिन है, कौन सा डे है, फ्राइडे, सैटरडे से सत्युग शुरू हो जाएगा, इतनी शक्ति है भगवान की, और होगा, होता ही है एक दिन, आप देखिएगा, देखिएगा, देखना मत तब तक, रुकना मत, लेकिन कलयुग है आज और कल से सत्युग चालू कर देंगे, इतनी शक्ति भगवान की, भगवान अलाउ कर रहे हैं कुछ समय के लिए कलयुग। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवद गीता तथा श्रीमद भागवतम के वचनों को ना पढ़ें। ध्यान देना इसमें ना रह गया, ये लिखा है ना, यही तो मतलब है इसका, ना पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे ना। माता जी ने करेक्ट कर दिया, ठीक है, तो पढ़ना बहुत जरूरी तब समझ पाएंगे। जीवे क्या है वो, माया मुक्त जीव नहीं सुतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कौल कृष्ण वेद पुराण। अभी मैं शानु प्रभु से मजाक कर रहा था, कृष्ण शानु प्रभु आप जानते हैं आप कौन है, तो प्रश्न भी अजीब सा है ना, शानु प्रभु आपका नाम क्या है, समथिंग लाइक दैट। बोले ये भी उन्हें उत्तर बड़ा विनोद में दिया, अहम ब्रह्मास्मि, उन्होंने कहा वाह भाई वाह, धन्यवाद, वेरी गुड, सही उत्तर है, यस। जो भगवान की अपरा यानी हम अपने को ही नहीं जानते तो भगवान को क्या जानेंगे, बताइए, जब तक हम भागवत को नहीं सुनते। जो श्री जो भगवान की अपरा शक्ति में है उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। इसका अर्थ क्या है, अपरा शक्ति मतलब भौतिक शक्ति से प्रभावित। प्राय भारतीयों को बोलो कहो भगवान है, हाँ भाई कोई तो शक्ति है जो चला रही है, कोई तो शक्ति है जो चला रही है। महाराज बोलते हैं तुम्हारी नानी है, शक्ति तुम्हारी नानी है जो चला रही है, कौन है भाई, प्राय लोग सोचते, और शक्ति का भी कोई रूप नहीं दे पाते कि वो है कौन, और ये समझ नहीं पाते शक्ति मतलब शक्तिमान। पंखे को शक्ति चला रही है, लेकिन वो शक्ति बिजली करंट कहां से आ रहा है, पावर हाउस से आ रहा है, पावर हाउस देख रहे हैं मोहित प्रभु, अच्छा पावर हाउस को नहीं देख रहे हैं तो फिर ये सोचेंगे अरे ये करंट तो अपने आप ही आ रहा है, ऐसा हो सकता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि करंट है तो पावर हाउस भी है, सीधी बात। चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। बहुत सुंदर बात है, जब भगवान जब यहाँ पे नहीं आते हैं तो ये हल्ला होने लगता है कि भगवान नहीं है, इसलिए भगवान आकर के अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं और दिखता है कि लोग देख पाते हैं कि हाँ भगवान कैसे हैं, अन्यथा सामान्य भौतिक इंद्रियों से भगवान को देखना असंभव है। ये बात समझ में आई, क्या समझ में आया, भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन भगवान अपनी अचिंत शक्ति से अपने आध्यात्मिक स्वरूप को इस जगत में समय समय में प्रकट करते हैं ताकि लोग देख पाए कि भगवान कौन है। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति यानी माया से कलमश ग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसका बहुत सिंपल अर्थ ये है, वह सोच रहे हैं कि निराकार ब्रह्म से कृष्ण आए हैं, और इसको भगवान ने भगवद गीता में क्या बोला है, नवे अध्याय में, अवजानंती माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। एक और बोला था क्या, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धया, जिसके पास बुद्धि है ही नहीं वह सोचता है कि निराकार ब्रह्म से कृष्ण आए, संभव नहीं है। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं भगवत कृपा से समझ सकते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। लीला तो मैं नहीं बताऊंगा, होमवर्क आप लोगों के लिए है, लेकिन आप सार्वभौम भट्टाचार्य के उद्धार के प्रकरण को सुनेंगे तो वहां पे गोपीनाथ पटनायक बोलते हैं कि भाई केवल शास्त्र की ही बात नहीं है, भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। तो महाप्रभु से वो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं भाई यह क्या प्रमाण है कि आपके पास आप पर कृपा हुई है और मेरे पर नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि आपके घर में ही भगवान कृष्ण हैं श्रीमन चेतन महाप्रभु के रूप में, सारे भगवान के लक्षण उनमें हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो भगवान है, तो ये दिखाता है कि आप पर कृपा नहीं हुई। ठीक है, समझ रहे, ये मुझे कई दिन तक समझ में नहीं, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जिस पे भगवान की कृपा होती है वह भगवान को समझ पाता। तो यानी कृपा का क्या प्रमाण है भाई, ये क्या, आप में से कितने लोग भी पूड़ी खाएंगे, पूड़ी है, पूड़ी व्यवस्था के लिए प्रसादन के बाद कोई नहीं खाएगा। तो क्या प्रमाण है कि आपको पूरी की आवश्यकता नहीं है, पेट भरा हुआ है? ए, नहीं सॉरी गलत बोल गया, क्या प्रमाण है कि आपका पेट भरा हुआ है? क्योंकि प्रसादम देने के बाद भी हाँ नहीं, तो ये समझ रहे ना, प्रसादम देने के बाद ना नहीं हमें चाहिए। उसी प्रकार से कि क्या प्रमाण है कि भगवान कृष्ण की कृपा हुई है, आप उनको समझ पा रहे हैं? मेक सेंस? देखिए भगवान को प्रभुपाद जी ने अभी बता दिया पूर्ण रूप से कोई नहीं समझ सकता, बिकॉज वो अनंत है। लेकिन कुछ कुछ भी समझ पा रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है? कृपा है भगवान की। देखिए ये आसान बात नहीं कि आप भगवदगीता को स्वीकार कर ले रहे हैं। भगवदगीता भागवत को स्वीकार कर लेंगे तो भगवान समाज में आ जाते आसानी से। कठिनाई ये है कि स्वीकार नहीं करते। क्या आप लोगों को आसान भव नहीं है? आप लोगों को प्रीचिंग को, आप लोगों को प्रीचिंग करिए, लोग नहीं स्वीकार करेंगे गीता भागवत? तो क्या है? हृदय में कलमश है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब हृदय में पाप रहता है तो शास्त्र में और साधुओं के वचन में लोगों की श्रद्धा नहीं होती है। कई बार रिपीट कर चुका हूं, रिपीट करने से याद रहती है बात। और सहज श्रद्धा होती है अगर पुण्य रहता है। फिर से रिपीट करूंगा, जब कोई व्यक्ति सुकृत करता रहता है, वो सुकृत इकट्ठा होता है और मैच्योर होता है, तो उसकी श्रद्धा हो जाती है साधुओं में। साधुओं से सुनते हैं, भक्तों से सुनते हैं, हाँ ये सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। मेक सेंस? यस। कहाँ थे हम लोग? केवल भक्तगण ही जो भगवान यहां पर। एक छोटा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं, किनका था वो? माता जी की लड़की थी वो छोटी सी, सरस्वती। तो प्रभुपाद बहुत विनोद से बोल रहे थे, साइंटिस्ट सामने बैठे थे और जो थियोसोफर फिलोसोफर, बोले भगवान कौन है? तो बोले हम भगवान के बारे में जानते हैं लेकिन यह नहीं जानते भगवान कौन है। तो फिर उन्होंने सरस्वती को बुलाया, सरस्वती भगवान कौन है? तो एकदम छोटी सी बच्ची बोली, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि देखो एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति है जो हजारों साल हजारों जन्म तपस्या करे और समझे कृष्ण भगवान है, और आप गुरु से स्वीकार कर लीजिए कृष्ण भगवान है, तो आप बुद्धिमान है ना। तो फिर आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप प्रताप रुद्र का उद्धार पढ़ सकते हैं, मध्य लीला चैप्टर भूल रहा हूँ, पढ़ लीजिए महाराज प्रताप रुद्र का उद्धार। उसमें भी यही बात आती है, उन्होंने स्वीकार किया सार्वभौम भट्टाचार्य की शिक्षा को कि श्रीमन चेतन महाप्रभु कृष्ण है, और फिर वह उसको आके अनुभूत कर पाए। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण के अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। ये समझ में आ रहा है? भगवान के भक्तों से सुन करके वह भक्ति करते हैं, भक्ति करके भगवान की कृपा प्राप्त होती है, फिर उनको दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक ये बात बोल रहा है, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। ठीक है, ओके यहां रुकते हैं, कोई अगर प्रश्न है किसी का तो। ओके, इसका अर्थ मैंने नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए मैंने कुछ टीका नहीं किया। क्या इसका पता नहीं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, जरा बताइए लास्ट लाइन। इतना जोर से मत बोलिए, माइक पे बताइए। कहने कहते सुनाई नहीं पड़ रहा, इतना जोर से बोलिए, माइक पे बोलिए।
व्हाट इज आत्मा, व्हाट इज सुप्रीम, इट इज ही whom we have to worship।
हाँ यही देखिए, इंग्लिश में तो समझ में आ रहा है कि परमात्मा वह है जो हमारे उपास्य हैं। हिंदी में थोड़ी सी बात समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हैं?
प्रभु जी, ब्रह्मा जी को जब तक पता नहीं था, जब तक भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान,
यस,
उसके बाद तो पता है ना अभी?
हाँ, लेकिन फिर भी वे भ्रमित हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। ये आज मैं कंफर्म कर रहा था बात कि हर दिन सुबह ब्रह्मा जी भूल जाते हैं कि सृष्टि कैसे करना है। हर दिन भगवान को याद दिलाना पड़ता है, हर दिन, दैट्स टू मच यू नो। हर दिन मैं बोलूं कि आप रोटी बनाना आज जानते हैं, कल क्या प्रभु जी भूल गया रोटी कैसे बनती है, रोटी क्या चीज होता है प्रभु जी, फिर बड़ा तपस्या करो तो समझोगे रोटी कैसे बनती है। दैट्स टू मच इजंट इट। लेकिन भगवान को कोई दिक्कत, हर दिन भूल जाते हैं, सुबह रात में सोते सुबह भूल जाते हैं, फिर रात में सोते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर तपस्या करते हैं, फिर उनको याद आता है कि भगवान कैसे सृष्टि करे। कितना आप लोग कितना इसको ईजी लेते हैं ना, ऐसे आपको ड्रेसिंग करो जैसे कल की तरह से आज कर रहे, लेकिन भगवान याद दिलाते ही ध्यान देना चाहिए एकदम। मैं ये बात याद दिलाता हूँ, मुझे ऐसी घटना हो चुकी है। मैं इंडोनेशिया में था, मैं बताया था आपको, सुबह उठा तो टूथपेस्ट की जगह वो जो शेविंग जेल थी वो लगाने वाला था उसके ऊपर, टूथब्रश के ऊपर। फिर एकदम से मुझे याद आया मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो हर चीज के लिए भगवान पे आश्रित है। हाँ भगवान तो, बच्चा हर दिन भूल जाता है मैं सुबह। ठीक है, रुकते हैं। श्रीमद भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।